આપણે આષાઢી પૂર્ણિમા કે રાત્રિ કે સમય કે બીચ કે માં જો કનવા એકદમ ખીલા હૈ ઓર ભગવાન ઘંટી બજાકર કે ગોપીઓ કા આહવાન કિયા ઓર સબ ગોપીયાં આઈ ઓર ભગવાન ને કહા કે તુમ બિના બુલાવે કૈસે આઈ ઉન્હોને કહા કે આપ કૈસી બાત આપણે જો બંસી બજાઈ તે નિમંત્રણ તો લિયા થા और कहा कि रात्रि के समय में अपने पतियों को छोड़ करके दूसरे पति पाना ये उचित नहीं। आप दूसरे पति कैसे, आप तो हमारे पतियों के पति हैं, आप जगत के पति हैं और आप सबकी आत्मा है, हम आपको पहचानती हैं। तो भगवान चुप हो उस वक्त के बीच के वहां समझो कि भगवान ने कीर्तन किया और गाना बजाना नाचना कीर्तन ये सब करके के फिर अंतर्ध्यान हो गए तो फिर गोपियां व्याकुल होकर के और बन बन में भगवान को समझो कि ढूंढने के लिए घूमने लगी। आखिर में इतनी व्याकुल हो गई कि उनके प्राण जाने की तैयारी हुई तो भगवान क्षण मात्र में प्रकट हो गए, तो वो मिलने की तीव्रतम इच्छा इसी प्रकार से थी। भरत जी महाराज जो है तुलसी के प्रमाण में दिख रहा है उत्तरकांड के वहां, जब भगवान नहीं पूछे और अवधि के आधार के लिए एक ही दिन रह गया, उस वक्त में भरत जी की जो दशा है वो भी ऐसी हो गई कि मरने की तैयारी हो गई। राम वीर सागर में है भरत मगन मन हो, रूप धरि पवन सुत आए गए जी पोत, राम का जो वियोग है वो ये सागर, उसके वहां भरत का वन जो है वो मगन हो गया। उस समय में ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वह प्रकट हो गए, जैसे कोई डूबते हुए के लिए नौका आ जावे, इस प्रकार से नौका रूप से वहाँ आगे भरत के प्राणों को बचाने के लिए डूबते भरत को वार लिया और आखिर के कहा कि जिसके शोक के बीच के वहां तुम नाम का रटन कर रहे हो वे भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के सही थे, समझो कि आप पहुंचे। और सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य जवा कहा तुम भैया कौन हो, कहाँ से आए? उन्होंने परिचय दिया कि मैं हनुमान नाम का बंदर हूँ, भगवान का सेवक हूँ। कहा तुमने जो हमारे को संदेशा दिया इसके लिए मैं तुम्हारे को क्या पुरस्कार दूं, संसार के वहां कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जो मैं तेरे को देख कर तुम्हारे इस ऋण से मुक्त हो जाऊं, कैसा भाव? तो यहाँ एक प्रकार से थी भरत के दिल में जो मिलने की इच्छा है वो तीव्रतर है। तीव्रतर इसलिए कि तीव्रतम होती तो उस वक्त भरजी आ जाए, भरजी के स्थान के माना भरत जी के लिए भगवान आ जाते और भगवान के भगत आए और भरत जी बाद हुए। और वो तीव्र इच्छा है कि समझो कि भगवान आते हैं किंतु किसी थोड़ा विलंब करके आते हैं, वो तीव्र इच्छा है मिलने की, जैसे ध्रुव जी के हृदय के वहां इच्छा थी मिलने की, आए भगवान किंतु अंत के संत आए। इसी प्रकार से थी आजकल के समय में तीव्र इच्छा होने के साथ ही भगवान आ सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय के वहां कलयुग के कारण बहुत छूट है, इसलिए भगवान की प्राप्ति के वहां कोई विशेष कठिनाई नहीं है और विलंब भी भगवान नहीं करते, किंतु हमको दिलचस्पी के साथ साधन करना चाहिए। जिस प्रकार से थी हम लोग अपने रुपयों के लिए कोशिश करते हैं, उस प्रकार की कोशिश भगवान के लिए हम करें तो शीघ्र भगवान आ सकते हैं। बल्कि एक प्रकार से तुलसीदास जी ने तो ये याचना की भगवान से कि काम ही नारी प्यारी जिनी लोभी प्रिय जिनी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहि राम। कामी पुरुष को जैसे नारी प्यारी है और लोभी आदमियों को जैसे रुपया प्यारा है, इस प्रकार से हे रघुनाथ जी महाराज आप मुझको प्रिय रहे। न भगवान के मिलने की जो इच्छा होती है वो खुश दिवाली जिसको हम कहते हैं कि अपने गौण इच्छा, जैसे सब कोई चाहते हैं कि भगवान मिल जाए तो अच्छी बात ही है। किसी को पूछो कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं चाहते। तो ये भगवान के मिलने की जो इच्छा है ये गौण है, भगवान से मिलने की इच्छा बहुत मामूली है। और सामान्य इच्छा उसका नाम है कि भगवान के मिलने की इच्छा है और संसार के विषय भोगों की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है। ये चाहता है कि संसार का सारा भोग ये सब कायम रहे और भगवान मिले हमारे को, सब प्रकार का आराम मिलते हुए और भगवान मिले तो भगवान से मिल ले। तो जितना प्रेम संसार के विषय भोगों के बीच के माँ और उतना ही प्रेम भगवान के बीच के माँ, तो दोनों में समान प्रेम हुआ। जब भगवान के माँ अधिक प्रेम है विषयों की अपेक्षा तो भगवान में मुख्य प्रेम है, और विषयों के माँ यदि भगवान की अपेक्षा अधिक प्रेम है तो भगवान में गौण प्रेम। तो अधिकांश मनुष्यों का तो भगवान में जो प्रेम है वो गौण है, और कुछ आदमियों का जो बड़े हुए हैं साधन के बीच के माँ, उनका जो प्रेम है वो समान है भगवान में भी है और संसार में। और जो और बढ़ गए हैं उनका भगवान में प्रेम मुख्य हो गया है और संसार के बीच के माँ गौण हो गया। भगवान के माँ मुख्य प्रेम हो गया और संसार के माँ उनका प्रेम है तो गौण है, बहुत मामूली है। जो माफक समझते हैं कि हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, स्त्री पुत्र धन माने राज लोकी का ऐश्वर्य भी हम भगवान के लिए सुकरा सकते हैं, अपने प्राणों को भी हम अर्पण कर सकते हैं भगवान के लिए, हम प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं भगवान के लिए। तो ये मुख्य प्रेम, मुख्य प्रेम इसलिए है कि प्राणों के माँ और राज में और इनके माँ भी प्रेम है, उसको मूल्य देता है ना कि ये हमारा राज है, हमारी चीज है, हमारा शरीर है, प्राण है, एक प्रकार से इनका भी भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। ये तो नहीं कि एक प्रकार से इनका त्याग करना कौन सी बड़ी बात हुई, इनका त्याग करना कितना महत्व देता है वो, कि भगवान के लिए मैं इनका त्याग कर सकता हूँ। जैसे कोई आदमी कहे तो तू कह तो भाई तेरे लिए वो काम मैं छोड़ दूं, तो वो कभी मेरे लिए तू छोड़, तुम अपना चलो जैसे चलो। तो भगवान के ऊपर उसका भार रख करके या एक प्रकार से एहसान करके, और जो आपने ये कहता है और ऐसा करता भी है, तो उसका प्रेम भगवान के माँ मुख्य है। तुम लोग की जैसे प्रकृति की दो आपसों में प्रेम हुए और उनमें आय हुए, एक में तो 100 रुपया महीने की आय है और एक में 10,000 रुपया महीने की आय है। 10,000 रुपया वालों ने कह दिया कि दोनों आपसों में से एक का ही काम रहेगा, या तो उससे तो काम कर या हमारे से काम कर, दोनों से नहीं कर सकेगा। तो झट कर देगा कि मैं उसको छोड़ देता हूँ, सोचता है कि 10,000 रुपया कैसे छोड़ दूँ, अस्तो तो छोड़ सकता हूँ। तो इसी प्रकार से जिनके माँ कम प्रेम होता है उसको त्याग देता है, अधिक प्रेम को स्वीकार करता है, वो तो मुख्य प्रेम है। और जहाँ अनन्य प्रेम होता है वहाँ तो सबको छोड़े हुए ही है, जिनमें प्रेम नहीं है उनको तो उन्होंने परां से छोड़ दिया। भगवान मिले या भगवान न मिले, भगवान की मर्जी, तुझे संसार के पदार्थों में तो प्रेम एक रति भरे ही नहीं, तो संसार के भोगों में, पदार्थों में, पीड़ा में, किसी में किंचित मात्र भी आसक्ति या प्रेम नहीं है, तो वहां तो छोड़ ही रखा है। छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं कि मैं भगवान के लिए सबको छोड़ दूं, ये बात नहीं, वो तो छोड़ ही दिया भगवान के लिए सबको। केवल भगवान के मनुष्य का प्रेम है और किसी चीज में प्रेम ही नहीं, चाहे सब चीज जल जाओ चाहे नष्ट हो जाओ, इसका तो उस समय किंचित मात्र भी प्रेम नहीं। तो यह अनन्य प्रेम, जब भगवान के में अनन्य प्रेम हो जाता है तो भगवान से नहीं है तो आपने अटकते। उस अनन्य प्रेम के नीचे वहां जो इच्छा होती है मिलने की, वो बड़ी तीव्र इच्छा होती है। उस तीव्र इच्छा के बीच के वहां तीव्र का ये भेद है कि तीव्र और तीव्रतर और तीव्रतम। तो तीव्र इच्छा में भगवान मिल जाते हैं और तीव्रतर होने से और भी जल्दी मिल जाते हैं, और तीव्रतम इच्छा होने के बाद तो क्षण मात्र भी भगवान नहीं अटकते। जैसे जो मच्छी होती है और मच्छी का जो प्रेम जो है जल के बीच के वहां अनन्य प्रेम है, जितना जल के वहां प्रेम है इतना प्रेम और कोई चीज में भी मच्छी का नहीं। और जल के मिलने की इच्छा भी है अभाव के बीच के वहां, जब कोई मच्छी को निकाल करके बाल में फेंक देता है तो उसके दिल के वहां यही बसता है कि किसी प्रकार मुझको कोई जल में डाल दे या किसी प्रकार मुझको जल मिल जा। वो आखिर के मत बिना जल के तृप्ति तृप्ति मर जाती है, क्योंकि जल जो है वो तो जड़ है। जल की जगह भगवान होते तो उसके तर्पण को नहीं सहते और तुम जो उछल कर मच्छी पर आकर जड़ है तो गिर जाता, किंतु जल जड़ है वो तो जड़ है, चेतन नहीं है। तो इस प्रकार से मच्छी की बापक जो भगवान के लिए तृप्ता है, फिर भगवान किसी प्रकार से विलंब तो नहीं करते। तो प्रेम कैसा होना चाहिए कि जैसा मच्छी का भगवान के बीच के वहां ऐसा वहां की। और समझो कि नियम को तो नियम जो है तो पपैया की मापक होना चाहिए। पपैया जो है चातक वो एक प्रकार से कि वर्षा ऋतु के बीच के वहां आकाश को ताकता रहता है, बादलों को देखता रहता है, और कोई भी बादल आया तो क्यों क्यों करता है, चाहे वो बसे चाहे न बसे। चातक की जो टेक है, चातक की जो रटन है, इस प्रकार की रटन, इस प्रकार की टेक और इस प्रकार का नियम कि दूसरा जल पीता ही नहीं चाहे प्राण चले जाए। भूमि पर पड़ा हुआ गंगा जल भी वो नहीं पीता, वो तो आकाश से जो बरसता है उसी को पीता है। इस प्रकार से थी समझो कि भगवान के सिवा और कोई भी बात की मनुष्य इच्छा नहीं करे, किसी में भी प्रेम नहीं रहे, तो वो एक प्रकार से चातक की माफक नियम है। जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती है पति के सिवा दूसरे पति को देखती नहीं, जो उत्तम पतिव्रता होती है समझो उसके दृष्टि में तो संसार के मां अपने पति के सिवा कोई दूसरा पति है ही नहीं, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है। जैसे तुलसी राज कहते हैं उत्तम के ऐसे बस मन माही, स्वपन आन पुरस जगनाई। उत्तम जो पतिव्रता है वो तो किस प्रकार से के आपने अनुभव करती है कि स्वप्न के बीच के वहां भी उसके हृदय में ये भाव नहीं होता कि कोई मेरे पति के सिवा कोई दूसरा पति दुनिया में है। तो इसी प्रकार से थी समझो भगवान के मां जो एक निष्ठ भक्ति है, एक ही निष्ठा है, वो एक प्रकार से थी कपैये की मापक है। तो इस प्रकार का भाव होने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कपैये को जो जल नहीं मिलता है तो वो ही बात है कि जल है तो जड़ है, कपैये के दिल के मां तो प्रेम है किंतु जड़ के तो हृदय में प्रेम नहीं है। और जड़ की जगह भगवान होते तो उसी को समझो कि वर्षा के रूप में बरसने लग जाते। तो ये समझना चाहिए कि भगवान बड़े प्रेमी और बड़े एक प्रकार से समझो कि आपने उत्साहित है, उत्सुक है, जैसे हम लोग उत्सुक रहते हैं भगवान के लिए, ऐसे भगवान हमारे लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान एक प्रकार से मिलने के लिए एकदम तैयार ही रहते हैं, बुलाने के साथ ही एक प्रकार से प्रकट हो जाते हैं, किंतु वो बुलाना प्रेम से होना चाहिए, केवल कथन मात्र से नहीं। और इसी प्रकार से भी अपने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए कि जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करता है, जब चंद्रमा उदय होता है तो एक तक चंद्रमा को देखता रहता है, मुग्ध हो जाता है, जब चंद्रमा छिप जाता है तो कोई उपाय नहीं। तो इसी प्रकार से थी समझो कि भगवान के मुखार बिंद को अपने मन से थी, समझो कि चकोर पक्षी के मापक हम परमात्मा के स्वरूप को देख रहे हैं, ध्यान लगावे तो भगवान को बाध्य होकर के प्रकट होना पड़ता है। तो ये आपको भगवान के अनन्य भक्ति के विषय के बीच में बात कही गई। समय जो है नारायण 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 श्रीवल नारायण नारायण श्रीवल नारायण 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 श्रीवल नारायण नारायण श्रीवल नारायण नारायण श्रीवल नारायण नारायण महापुरुषों के प्रभाव की बात खुद महापुरुष ही क्या कह सके या नहीं कह सके संदेह है। दुनिया क्या है, जैसे नाम की महिमा नहीं बदलाई जा सकती, इसी प्रकार से महापुरुषों की महिमा भी कितनी बदलाव फिर भी थोड़ी है। भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा तुलसीदास जी ने बतलाई, आखिर में क्या कहा, कवे हूँ कंगा लग नाम बड़ाई, राम ने सकहि नाम गुण गाई। कहाँ तक भगवान राम के नाम की महिमा गाऊं, भगवान राम खुद भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। इसी प्रकार से महापुरुषों के प्रभाव की बात महापुरुष ही जाने, वह भी वाणी से नहीं बदला सकते। तो मैं आपको क्या बतलाऊं, आपने कहा कि किसी कहो तो इस प्रकार से प्रेम होती है, इसलिए जो की चर्चा की जाती है कि संसार के बीच में महापुरुष बहुत कम है। कुछ कोटि के महापुरुष तो वे हैं भगवान ने जिनको संसार के बीच के मां भेजा है, संसार के कल्याण के लिए, जिसको हम अधिकारी पुरुष कहते हैं, भगवान ने अपना अधिकार दे करके भेजा है। ऐसे जो पुरुष हैं उनके तो दर्शन से भाषण से वार्तालाप से चिंतन से मनुष्य जो है परम पवित्र बन जाता है। हम उससे दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र पवित्र हो जाते हैं,
महापुरुष हमारे ऊपर दृष्टिपात करता है कि हमारा सारा शरीर ही पवित्र हो जाता है। हम इस महापुरुष का चिंतन करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और महापुरुष हमारा चिंतन करे तो हम उसके हृदय में जाकर एकदम पवित्र बन जाते हैं। तो सब प्रकार से हमारे लाभ ही लाभ। महापुरुष हमारे को छू ले तो हमारे शरीर में आनंद की धारा उठने लगे, रोमांच होने लगे। तो हम महापुरुष को छू लें तो वही हमारी अलौकिक दशा हो जाए। महापुरुष के दर्शन से, भाषण से, सपन से, वार्तालाप से, हर एक प्रकार से लाभ ला। और फिर उनकी हम आज्ञा का पालन करें तब तो बात है कि हम भी महापुरुष बन सकते। उनका अनुकरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उसे हम भी महापुरुष बन सकते। महापुरुष की दृष्टि जितनी दूर पड़ती है उतना स्थान एकदम पवित्र हो जाता है। नेत्रों के द्वारा उसके प्रमाण चारों तरफ फैल जाते हैं। उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। उनके गुणाली के बीच के माँ भगवान श्री राम जब वन में गए तो वाल्मीकि ऋषि एक सुप्रति के पुरुष थे, तो कृषियों के बीच के माँ देखा पशु भी अपने बैल को छोड़ करके पशु वन में प्रेम करते। वाल्मीकि का प्रभाव महाराज विष्णु के प्रभाव की बात आपको उस दिन बताई थी। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है, राजा नहुष को श्राप हो गया था अल्प मुनि का, तो अजगर बन गया था। उस अजगर के वेश में महाराज विदेश से बातचीत की, उनके प्रश्न का विदेश उत्तर दिया। उसे उसकी आत्मा पवित्र हो गई और शरीर से उसकी ज्योति दूर हो गया, आकाश में उसे हो गया। पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं राज ऋषि नहुष, मैं बड़ा भारी पाप किया था। इंद्र की जो असली है पृथ्वी के पास में उसके साथ में व्यवचार करने के वास्ते मैं जा रहा था और ऋषियों को पाल के मैं जोड़ करके जा रहा था। और अगर ऋषि के लात मारी तो उन्होंने मुझसे साफ दे दिया कि जाओ की अजगर हो जाओ, किन्तु मुझसे दुखी दे करके उन्होंने मेरे पर अनुग्रह करके साथ में यह बात कही कि तुम्हारे कुल के माँ महाराज जिससे पैदा होंगे उनके दर्शन से उनके साथ में वार्तालाप करने से उनके पापों से मुक्त हो जाओगे। तो हे महाराज जी से आज आपके दर्शन से आपके साथ में वार्तालाप करने से उनके पापों से मुक्त हो गया और अब सुखम गति को जा। तो ये बात होती है कि राजा जीशु के साथ के माँ वार्तालाप करके दर्शन करके नहुष जैसे पापी पवित्र हो गए। उनके तीन पाप बड़े भारी भयंकर पाप थे। एक तो इंद्र की पति जो श्री पतिव्रता उसके साथ में अपने इंद्र दुर्चार करने की भावना, और दूसरी बात ये कि ब्राह्मणों को अपने कुंडली की जगह पाल की धोने की जगह ऋषियों को लगाना, ब्राह्मण श्रेष्ठ जो उसके लात मारना, कितना भारी पाप। इसी प्रकार से थी महाराज जिसका का और भी प्रभाव दिखला है विराट नगर के वहाँ विस्तार से कथा आती है। वहाँ भीषण जी का मैंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन का पता नहीं लगा सके कि दुर्योधन तुम पांडवों को खोद रहे हो, मुझको मालूम है कि कहाँ पांडव होते। तो भाई महाराज जिस देश में राजा जीते वहीं सब पांडव। अब राजा युद्ध कौन से देश में मैं बतलाता हूँ, जहाँ राजा युद्ध से रहते हैं वहाँ धन और धान की वृद्धि होगी, वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, वहाँ पुष्कल सब धान होगा और गवा की वृद्धि होगी और वहाँ की प्रजा धर्मात्मा बन जाएगी उनके पास करने से उसके प्रभाव। तो ये महापुरुषों का प्रभाव है, ये राजा युद्ध का प्रभाव है। इसी प्रकार से थी संसार के माँ जो उत्पत्ति के पुरुष हुए हैं उनकी महिमा है। राजा जिसने अधिकारी पुरुष नहीं था, कारक पुरुष नहीं था, भेदराज जी महाराज तो कारक पुरुष थे, उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था। ध्यान देना चाहिए भेदराज जी की कितनी भारी शक्ति थी, कितने उच्च कोटि के महापुरुष थे। राजा धक्का जो है यह इच्छा प्रकट करी कि ये परस्पर जो युद्ध है उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो देवव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हारे को दिग्दर्शी दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे को सारा युद्ध यही दिखेगा। बोले महाराज मैं अपने कुटुंब को मरता हुआ देखना नहीं चाहता, मैं तो सुनना चाहता हूँ, कोई सुना दे मुझे। बहुत ठीक है। तो संजय को देवव्यास जी ने दिग्दर्शी दी। कुरुक्षेत्र के वहाँ युद्ध हो रहा है और हस्तिनापुर के वहाँ संजय जो है धर्मराज को सब बता रहे, जो कुछ वहाँ युद्ध हो रहा है सब दिख रहा है और जो आपसी में बात होती है वो सुनी जाती है, एक दूसरे के मन की बात का भी ज्ञान हो जाता है। आप हर कहीं देवव्यास जी महाराज आपकी कितनी भारी शक्ति थी जिसकी तो बात कर रही, इतनी शक्ति तो संजय को दी। तो संजय मुग्ध हो गया। संजय गीता में कहता है श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन सुन करके मेरे हृदय में प्रसन्नता होती है, बारम्बार प्रसन्नता होती है। उस भगवान श्री कृष्ण का रूप में याद करता हूँ तो मेरे कितने बारम्बार प्रसन्नता होती है। ये तो संजय का हाल है। और देवव्यास जी सुंदर की अपने आसन राशि पर्व में दिखाया है कि 16 वर्ष जो युद्ध हो गया था तो गांधारी के कुंती के प्रार्थना करने पर वो सारा सैनिक सेना ने सुंदर की वापिस बुला दी और सबसे मुलाकात करा दी और कह दिया कि जिसकी इच्छा हो वो अपने पति या पुत्र के साथ में जा सकते। रात भर सब मिलते हुए सब उनको वापिस कर दूंगा। गंगा में से सब सेना निकली, गंगा में प्रवेश कर गई और रात भर सबसे मिलते रहे। इतनी आसन की बात परीक्षित ने विश्वास नहीं किया कि ये तो गप है, आसन की बात है, मुझको ऐसी बात दिखा रहे तो मैंने विश्वास किया। देवजा जी वहीं बैठे थे तो सीता चाहते हो मेरे मेरे पिता को मेरे बहुत कष्ट हो गए और मैं जब करता हूँ किसी जब कर दिया बाकी का जब मेरा पिता आकर के करे किसी वक्त उसका आह्वान किया राजा पुत्र तुम्हें आ गए करा दिया। कितने प्रभाव की बात है, अद्भुत प्रभाव की बात है। महापुरुष उनके लिए कितनी बड़ी बात है। महापुरुषों की महिमा जितनी बतलाई जाए उतनी थोड़ी है, जितनी समझे उतनी थोड़ी है। जो आदमी महापुरुषों की महिमा जितनी मान लेता उसके लिए उतनी है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण